بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ ہود کی 45ویں, 46ویں اور 47ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں. تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری میر زادہ واقفی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا, ہے رب, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے. کہا, ہے نوح, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, وہ تو اششٹ کرم ہے, تو تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اجانی لوگوں میں سے نہ ہو جا. کہا, ہے رب, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज गुरुवार है। आबान माह की 20, रबीउस्सानी की 5 और नवंबर की 11 तारीख। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम आज की बात, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। दोस्तों, अभी आप थोड़ी देर में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप अख्तर रिजवी और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव की भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। ईरानी कमांडर ने इसराइल की धमकियों का जवाब दे दिया, जंग हम ही खत्म करेंगे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बाबरी मस्जिद की शहादत को शर्मनाक घटना करार दे दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि कश्मीरी इस समय सबसे ज्यादा नफरत नई दिल्ली से करते हैं। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने अफगानिस्तान में शांति की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय सरकार के गठन पर बल दिया है। मेयर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामी गणतंत्र ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ने, जो अफगानिस्तान के विषय पर सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के उद्देश्य से भारत के दौरे पर हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया गया। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव ने अफगानिस्तान में शांति की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय सरकार के गठन पर बल देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार के गठन पर बल दिया जाए जिसमें अफगानिस्तान के सारे कबीलों और राजनीतिक गुट शामिल हों। उन्होंने कहा कि ईरान अफगानिस्तान में शांति की स्थापना के संबंध में हर प्रकार की मदद करने और इस समस्या को हल करने के संबंध में अपने समस्त संसाधनों को प्रयोग करने के लिए तैयार है।
जनरल अली हाजी ज़ादे ने कहा है कि दुश्मनों ने IRGC की एरोस्पेस यूनिट के कमांडर ने कहा है कि ईरानी ड्रोन विमान दुश्मन की आंख कांटा बन गए हैं। जनरल अली हाजी ज़ादे ने कहा है कि दुश्मनों ने वर्षों तक ईरान पर हथियारों के प्रतिबंध लगाए रखे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। IRGC की एरोस्पेस यूनिट के कमांडर ने गुरुवार को शहीद हसन तेहरानी मुकद्दम की 10वीं बरसी के अवसर पर कहा कि दुश्मन जो हमारे मिसाइलों के बारे में वार्ता करने की बात कर रहा है या जो इस्लामी गणतंत्र ईरान के ड्रोन विमान उसकी आंखों का कांटा बन गए हैं और वो ये सब कुछ सीमित करने की बात कर रहा है, तो इससे हमारी शक्ति और क्षमता का पता چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے ورشوں سے ہم پر ہتھیاروں کے پرتیبندھ لگا رکھے لیکن ان کے پریاس پریناہین رہے ہیں۔ جنرل حاجی زادے نے دشمنوں کی اور سے سارے وکلپ میز پر ہونے کی دھمکی دہرائے جانے کے بارے میں کہا کہ اس سمے دنیا میں موجود ساری سرکاروں میں کیول اسرائیل ہے جو اپنے استتو اور اپنے جیون کو جاری رکھنے کی بات کرتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس لیے ایسا شاسن جو اپنے استتو کی جنگ لڑ رہا ہے اسے تباہ ہونا ہی ہے، اور ایسا شاسن کسی دوسرے دیش کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ اور اس سمے وہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ زیادہ تر آنترک سمسیاؤں پر نینترن پانے کے لیے ہے۔
ایران میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے کارن 123 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ایران کے سواستھ منترالے کی اور سے گروار کو دیے گئے آنکڑوں کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دیش میں کورونا سے 123 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس پرکار سے ایران میں کورونا سے مرنے والوں کی کل سنکھیا بڑھ کر 127,809 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 7,539 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ اب تک ایران میں کورونا سے 60,19,947 لوگ سنکرمت ہو چکے ہیں جبکہ 56,56,447 لوگ کورونا سے مکت ہوئے ہیں یا انہیں اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا ہے۔ ایران کے سواستھ منترالے کی اور سے جاری آنکڑوں کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 7,72,237 لوگوں کو کورونا کی ڈوز دی جا چکی ہے۔
یمن کے مغرب میں سینا کی پرگتی کے بیچ سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کے 5 استھائی سدسیوں اور یمن میں سعودی راجدوت نے ایک سنیکت بیان جاری کر کے مغرب میں یدھ رکوانے کی اپیل کی ہے۔ یمن میں سعودی عرب کے راجدوت محمد آل جابر نے سرکشا پریشد کے 5 استھائی سدسیوں، امریکہ، بریٹین، چین، روس اور فرانس کے پرتنیدھیوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی۔ سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد کے 5 استھائی سدسیوں نے اس بیٹھک کے بعد ایک سنیکت بیان جاری کیا اور اس میں یمن سنکٹ کی سماپتی کے لیے راجنیتک حل کی پراپتی کے پریاسوں پر بل دیا اور مغرب میں یدھ روکنے کی اپیل کی ہے۔ اس بیٹھک میں یمن کے معاملے میں سنیکت راشٹر سنگھ کے وشیش دوت کی اور سے سنستھا کی نگرانی میں راجنیتک حل کی پراپتی اور منصور ہادی کی تیاگ پتر دے چکی سرکار کے سمرتن کا جائزہ لیا گیا۔
یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد نے امریکہ کا انوسرن کرتے ہوئے یمن کے انصار اللہ آندولن کے 3 ورشٹھ لوگوں کو پرتیبندھوں کی اپنی سوچی میں شامل کر لیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار سرکشا پریشد نے یمن کے انصار اللہ آندولن کے عبد الکریم الغمازی، یوسف المدنی اور صالح مصفر صالح کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ سنیکت راشٹر سنگھ کی پرتیبندھوں کی کمیٹی نے ایک بیان جاری کر کے اکت 3 لوگوں پر یمن کی شانتی، سرکشا اور استھرتا کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے سینیہ آپریشنوں میں بھاگ لینے کے بہانے پرتیبندھ لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ان پرتیبندھوں کے ساتھ اب انصار اللہ آندولن کے 9 ورشٹھ لوگ سرکشا پریشد کی پرتیبندھوں کی سوچی میں شامل ہو گئے ہیں۔
امریکی سانسد الہان عمر نے کہا کہ یمن میں سعودی گٹھ بندھن کی اور سے لگاتار حملوں کی حالت میں ریاض کو ہتھیار بیچنا اپرادھ ہے۔ امریکی پرتنیدھی سبھا کے سدسیہ الہان عمر نے سعودی عرب کو کروڑوں ڈالر کے ہتھیار بیچنے کا ورودھ کیا ہے۔ اس امریکی سانسد کا کہنا ہے کہ ایسے سمے میں کہ جب سعودی عرب کے ہاتھوں یمنی مارے جا رہے ہیں، ریاض کو ہتھیاروں کی بکری کسی بھی استھتی میں سویکاریہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی نیتیوں میں واسطو میں مانواधिकारوں کی سرکشا کو پراتھمکتا دیتے ہیں تو ایسے میں مانواधिकारوں کے ہنن کرتاؤں کو سشستر کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ الہام عمر نے امریکہ دوارا سعودی عرب کو 650 ملین ڈالر کے میزائل اور سینی اپکرن بیچنے کو اسویکاریہ بتایا۔
الجیریا کے ودیش منتری کا کہنا ہے کہ سیریا کی عرب سنگ میں واپسی کا سمے آ چکا ہے۔ رشیا ٹوڈے کے انوسار رمتان لے آمیرا نے کہا کہ عرب سنگ سے سیریا کا باہر رہنا کسی سمسیا کا سمادھان نہیں ہو پائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دیش کبھی بھی عرب سنگ میں سیریا کے نلمبن کا سمرتھک نہیں رہا۔ الجیریا کے ودیش منتری نے کہا کہ عرب دیشوں کے راشٹردھیکشوں کی بیٹھک میں ان کا دیش عرب بھائیوں کو ایک دوسرے سے نکٹ لانے کے پریاس کرے گا۔ انہوں نے یو اے ای کے ودیش منتری کی سیریا یاترا کا سواگت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سنیکت عرب امارات کے ودیش منتری کی سیریا یاترا بہت سی بادھاؤں کو دور کرنے میں سہایک ہوگی۔
امریکہ نے سعودی کمپنی آرامکو کے مادھیم سے عراق کو نیانترت کرنے کی چال چلی ہے۔ इराकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका अब सऊदी अरब पर अपने प्रभाव का प्रयोग करके इराक के भीतर अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा। इराक के संबंध में अमेरिका की नई चाल के अनुसार वो सऊदी अरब को इस बात के लिए विवश कर रहा है कि वो आरामको कंपनी के माध्यम से इराक के साथ ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल और कुछ अन्य चीजों के बारे में सहयोग करे। इराकी सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब की आरामको कंपनी ने हालिया दिनों में इराक के कुछ मंत्रालयों के साथ वार्ता की है।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बुधवार को अयोध्या में मंदिर निर्माण के फैसले को लेकर कहा कि केवल दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह फैसला सही बन गया है, लेकिन यह सही फैसला बिल्कुल नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन अवर टाइम्स का विमोचन करने के बाद उन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस को शर्मनाक करार दिया, जिसने संविधान को कलंकित कर दिया। चिदम्बरम ने कहा कि आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जब लिंचिंग की प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की तरफ से निंदा नहीं की जाती, एक विज्ञापन को वापस दिया जाता है क्योंकि हिंदू बहू को एक मुस्लिम परिवार में खुशी से रहता हुआ दिखाया गया है। उन्होंने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर कहा कि इस फैसले का कानूनी आधार बहुत संकीर्ण है, बहुत पतली सी रेखा है, लेकिन समय बीतने के साथ ही दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया, इसलिए यह सही फैसला है। ऐसा नहीं है कि सही फैसला था इसलिए दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि देश में हिंदू खतरे में नहीं बल्कि फूट डालो और राज करो की मानसिकता खतरे में है।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 13,091 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,44,01,670 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,38,556 हुई है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर के लिए इस्लामी सहयोग संगठन OIC के विशेष दूत यूसुफ अद्दुबा को कश्मीर के बारे में विभिन्न सुझाव पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी दिल्ली सरकार से आज इतना घृणित है, इतना पहले कभी नहीं था। इस्लामाबाद में जम्मू कश्मीर के लिए OIC के विशेष दूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मार्च 2022 में OIC की बैठक इस्लामाबाद में आयोजित होगी। उनका कहना था कि OIC के विशेष दूत को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। कोविड के दौरान कश्मीर लोग समस्याओं में ग्रस्त है और इससे भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर जिस वित्तीय संकट से गुजर रहा है वो भी बुरा है और वहां का पर्यटन बुरी तरह से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को की गई कार्रवाई को भारत बड़ी कामयाबी समझता है, लेकिन जो कुछ उसने किया और जो मौका हुआ वो बिल्कुल उल्टा था।
लंदन की इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी में छात्रों, छात्रों तथा फिलिस्तीनी जनता के समर्थकों के विरोध की वजह से इसराइली राजदूत विश्वविद्यालय से भागने पर मजबूर हो गईं। विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने फिलिस्तीनी राजदूत को भाषण देने का निमंत्रण देने पर सहमति जताई। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि यमन में लड़ाई जारी है। मारिब नगर से सटे हुए पहाड़ी इलाकों पर नियंत्रण के लिए यमन की सेना और स्वयंसेवी बल हर ओर से कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि सऊदी युद्धक विमान अपने एजेंटों की सुरक्षा के लिए लगातार हवाई हमले कर रहे हैं, किंतु वे यमनियों की विजय में बाधा उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। अफगानिस्तान के मासूम बच्चे जिनकी उंगली पर स्याही लगाई गई है, उन्हें दरअसल پولیو ڈراپ پلایا گیا ہے۔ پولیو جیسی گمبھیر بیماری دنیا سے لگ بھگ ختم ہو چکی ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان میں اب بھی یہ بیماری پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ کانگریس پارٹی کے ورشٹھ نیتا اور پورو کیندری منتری سلمان خورشید نے اپنی کتاب میں ہندوؤں کی تلنا آتنکوادیوں سے کر دی ہے، جسے لے کر نیا راجنیتک وواد کھڑا ہو گیا ہے۔ بھاجپا نیتاؤں نے ان کی کتاب پر کڑی پرتکریا ویکت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی مکڑی کی طرح ہندوؤں کے خلاف جال بن رہی ہے، جبکہ سلمان خورشید نے کہا کہ سب کو اپنی بات کہنے کا ادھیکار ہے اور میں نے بھی اپنے اسی ادھیکار کا پریوگ کیا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی چرچا کے وشے۔ شوتاؤ، جیسا کہ آپ کو گیات ہے کہ یمن میں لڑائی جاری ہے۔ مارب نگر سے سٹے ہوئے پہاڑی علاقوں پر نینترن کے لیے یمن کی سینا اور سوئم سیوی بل ہر اور سے کاروائی کر رہے ہیں۔ حالانکہ سعودی یدھک ویمان اپنے ایجنٹوں کی سرکشا کے لیے لگاتار ہوائی حملے کر رہے ہیں، کنتو وہ یمنیوں کی وجے میں بادھا اتپن نہیں کر پا رہے ہیں۔ سلطان صدح کے رپورٹ پیش کریں ساتھ ہی قائم رضوی۔
من الجبهات المحتدين
یمن میں یدھ کے مورچوں پر ہونے والی پرگتی کے بارے میں جانکاری اکترت کرنے کے لیے یمن کے جن مورچے کے ساتھ ہم مارب سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر پہنچے۔ مارب نگر کے نکٹ اسٹریٹجک کھیتر میں یمن کے سوئم سیویوں اور سینکوں کے نینترن کے ساتھ ہی نہ ان کی پرگتی رکی، بلکہ دشمن کو ہر اور سے گھیرنے کے لیے اب وہ وبھن مارگوں سے آگے کی اور تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک چھاونی عمریش ہے جو جبل البلخ کے نکٹ ہے اور مارب نگر کے پہاڑ سے سٹا انتم دکشنی بھاگ بھی ہے۔ اسے دکشنی مارب کا دوار بھی کہا جاتا ہے۔ یمنی سینک اس سمے اسی پہاڑ کے آنچل میں موجود ہیں جہاں سے وہ مارب کے لیے اپنا سین ابھیان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایشور کی کرپا سے ہم نے عمریش چھاونی پر نینترن کر لیا ہے، یہ دشمنوں کی انتم چھاونی ہے۔ انشاءاللہ نکٹ بھوش میں نگر کو اپنے قبضے میں ہم لے لیں گے۔ ایشور نے ہمیں یہ سفلتا شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس تتھا یمن اور پرتیرودھ کے مورچے کے شہیدوں کے خون کے بدلے میں دی ہے۔
الحاج قاسم سلیمانی،
مارب نگر سے سٹے ہوئے پہاڑی کھیتروں پر نینترن کے لیے یمن کی سینا اور وہاں کے سوئم سیوی ہر اور سے کاروائیاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ سعودی یدھک ویمان اپنے ایجنٹوں کو بچانے کے لیے لگاتار ہوائی حملے کر رہے ہیں، کنتو وہ یمنیوں کی وجے میں بالکل بھی بادھا نہیں بن پا رہے ہیں اور وہ لگاتار آگے کی اور بڑھ رہے ہیں۔
الحمدللہ الذی بفضلہ حققنا ہذا الانتصارات،
خدا کا شکر ہے کہ اس کی مدد سے ہم نے یہ سفلتائیں ارجت کی ہیں۔ جوبے نگر میں شانتی استھاپت ہے اور ایشور کی کرپا سے ہمارے لڑاکے مارب نگر کے نکٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ آگامی دنوں میں ہم مارب اور اس کے بعد دوسرے نگروں تک پہنچنے کے بعد اب قدس اور الاقصا کا رخ کریں گے۔
بإذن اللہ والیمن بالکامل بإذن اللہ حتى نوصل الى القدس،
وہ شیطر جو آزاد ہوئے ہیں وہاں پر ہتھیار نہیں ہے۔ جوبے نگر میں لوگ شانتی سے جیون گزار رہے ہیں، اس سمے ہم جوبے میں ہیں۔ یہاں کے لوگ نارمل جیون گزار رہے ہیں، جھڑپیں اب اگریم مورچے پر اور بلخ پروت پر ہو رہی ہیں۔ وہاں والوں کو ہم وجے کی شبھ سوچنا دینا چاہتے ہیں۔ البلخ کے قبائلیوں سے ہمارا انورودھ ہے کہ وہ اب اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ یہ عجوبہ نگر ہے، نینترن کے بعد یہاں پر شانتی استھاپت ہو چکی ہے۔ یمن کی نجات ملی سرکار سوتنتر ہوئے کھیتروں میں بہت تیزی سے لوگوں کو سیوائیں اپلبدھ کروا رہی ہے۔ اس کھیتر کے لوگ بھی یمنی سینا اور سوئم سیویوں کے ساتھ مل کر گٹھ بندھن کے ورودھ یدھ میں بھاگ لے رہے ہیں۔ البلخ پہاڑ المعارب نگر سے سٹی ہوئی پروت شرنکھلا ہے۔ ورتمان سمے میں جھڑپیں اسی کھیتر میں اور اس کے ارد گرد ہو رہی ہیں۔ یمن کے جیالے دن پرتی دن پرگتی کرتے ہوئے بہت تیزی سے اسی اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ معارب سے IRIB کے لیے سلطان الصدح کی رپورٹ۔
افغانستان کے معصوم بچے جن کی انگلی پر سیاہی لگائی گئی ہے انہیں دراصل پولیو ڈراپ پلایا گیا ہے۔ پولیو جیسی گمبھیر بیماری دنیا سے لگ بھگ ختم ہو چکی ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان میں اب بھی یہ بیماری پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ بہنام یزدانی کی رپورٹ پیش کریں، ساتھ ہی احمد عباس۔
افغانستان کے معصوم بچے، ان کی انگلیوں پر سیاہی لگائی جا رہی ہے۔ دراصل پولیو ڈراپ انہیں پلایا جا رہا ہے، جس کے بعد ان کی انگلی پر سیاہی لگائی جا رہی ہے۔ پولیو جیسی گمبھیر بیماری دنیا سے لگ بھگ ختم ہو چکی ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان میں ابھی یہ بیماری پوری طرح ختم نہیں ہو سکی ہے۔ افغانستان پر امریکہ کا سینک قبضہ ختم ہو چکا ہے اور اس دیش سے امریکہ جا چکا ہے، تو اب پولیو ڈراپ پلانے کا ابھیان ویاپک روپ سے چل پڑا ہے۔ لوگ گھر گھر جا کر پولیو ڈراپ پلا رہے ہیں۔
ان بار کمپین طرز ہر دوری دیگر
میڈیکل ٹیم کے سدسیہ کا کہنا ہے کہ اس بار استھتی الگ ہے۔ اس سے پہلے سرکشا کارنوں سے پولیو ڈراپ پلانے کے ابھیان میں پریشانی پیش آتی تھی۔ 20 سال تک امریکہ نے افغانستان میں بے حد غیر انسانی طریقے سے اپنا کارکرم چلایا اور مانوتا پریمی یوجناؤں کے نام پر افغانستان کو نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بار پولیو ابھیان میں 30 سے 35 لاکھ بچے پولیو ڈراپ پراپت نہیں کر پاتے تھے۔ امریکیوں نے پولیو ابھیان کی آڑ میں ہی القاعدہ کے سرغنہ اسامہ بن لادن کا پتہ لگایا تھا اور اس کی ہتیا کر دی تھی۔
صحت یا غیر سیاسی،
طالبان نیتا کا کہنا ہے کہ پولیو ابھیان ایک غیر سیاسی مشن ہے، اس کا راجنیتک یا کسی اور پہلو سے دروپیوگ نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان میں اب پولیو سے لڑنے کے لیے جو ابھیان ویاپک روپ سے چل رہا ہے، اس میں مہیلاؤں اور بچیوں کی بڑی کیندریہ بھومکا ہے۔ طالبان بھی اس کا بھرپور طریقے سے سمرتھن کر رہے ہیں۔
مو خوشحال استیم بھائی کے باوجود کہ نظام تغیر کر رہا اور رجیم تغیر کر رہا، مو کمپین مو پاور۔
چکتسا کرمی کا کہنا ہے کہ دیش میں سرکار بدل گئی ہے، لیکن ہمارا ابھیان چل رہا ہے تو ہم خوش ہیں۔ ہم لگاتار افغانستان میں پولیو کو جڑ سے ختم کرنے کے اپنے لکشے پر کام کر رہے ہیں۔ کابل سے آئی آر آئی وی کے لیے بہنام یزدانی کی رپورٹ۔
کانگریس پارٹی کے ورشٹھ نیتا اور پورو کیندری منتری سلمان خورشید نے اپنی کتاب میں ہندوؤں کی تلنا آتنکوادیوں سے کر دی ہے، جسے لے کر نیا راجنیتک وواد کھڑا ہو گیا ہے۔ بھاجپا نیتاؤں نے ان کی کتاب پر کڑی پرتکریا ویکت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی مکڑی کی طرح ہندوؤں کے خلاف جال بن رہی ہے، جبکہ سلمان خورشید نے کہا کہ سب کو اپنی بات کہنے کا ادھیکار ہے اور میں نے بھی اپنے اسی ادھیکار کا پریوگ کیا ہے۔
بھارت کے پورو کیندریہ منتری اور کانگریس کے ورشٹھ نیتا سلمان خورشید نے اپنی کتاب سن رائز اوور ایودھیا میں، جس کا کل ہی ویموچن ہوا تھا، کتھت روپ سے ہندوتو کی تلنا آتنکی سنگٹھن ISIS اور بوکو حرام سے کی، جسے لے کر کڑی پرتکریائیں سامنے آئی ہیں۔ اچتم نیالے کے 2 وکیلوں نے پولیس کمشنر سے سلمان خورشید کے ورودھ کاروائی کی مانگ کی ہے۔ وکیلوں نے اپنی شکایت میں ان کے ورودھ سپریم کورٹ کی اومانلا اور ساماجک سدبھاؤ اور شانتی بھنگ کرنے کے پریاس کا آروپ لگایا ہے اور مقدمہ درج کرنے کا انوروھ کیا ہے۔ اس مدعے کو لے کر بھاجپا نے کانگریس پر تیور حملے کیے ہیں۔ کیندر کی سترورڑھ بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتا گورو بھاٹیا نے کانگریس پر آروپ لگایا کہ اس کی وچار دھارا ہندوؤں سے نفرت کرنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان خورشید نے جو کیا ہے وہ کانگریس کی وچار دھارا ہے۔
جو باتیں اس وموچن کے دوران کہی گئیں وہ کیول ہندوؤں کی بھاوناؤں کو نہیں، بھارت کی آتما کو بھی گہری ٹھیس پہنچاتی ہے۔ یہ سوال آتا ہے کہ کیا یہ لائن سلمان خورشید جی کی ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ آج کانگریس پارٹی کی وچار دھارا ہے۔
بھاٹیا نے کہا کہ ہندوتو کی تلنا آتنکواد سے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کانگریس پر آروپ لگایا کہ اسی نے ہندو آتنکواد کا آوشکار کیا تھا۔ بھاٹیا نے کہا کہ کسی بھی راجنیتک دل کو ادھیکار نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کی بھاوناؤں سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ گورو بھاٹیا نے کہا کہ سونیا گاندھی یدی ہندوؤں کا سمان کرتی ہیں تو انہیں اس پر صفائی دینی چاہیے۔ انہوں نے آروپ لگایا کہ کانگریس مکڑی کی جال کی طرح ہندوؤں کے خلاف جال بن رہی ہے۔ بھاجپا نیتا امت مالویا نے بھی ट्वीट द्वारा लिखा कि मुस्लिम वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ने वाली पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसी बीच सलमान खुर्शीद ने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा कि जो लोग हिंदू धर्म को नहीं समझते उनसे वे बहस नहीं कर सकते।
आप मुझे बताइए, इस देश में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे नहीं है, नहीं है ना। अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी, अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख।
उन्होंने कहा कि इस देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और मैंने भी इस पुस्तक द्वारा अपने इस अधिकार का प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियों के बीच सलमान खुर्शीद की इस पुस्तक ने राजनीतिक माहौल और गर्मा दिया है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों की और उसके बाद उसमें की जाने वाली कमी की। भारत में हालिया कई हफ्तों से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम जनता बहुत परेशान हो गई। इस विषय पर मीडिया में भी बहसें हुई और विपक्षी दलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कोरोना वायरस की महामारी के कारण लोग पहले ही काफी परेशान थे, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने लगे तो ये परेशानी और भी बढ़ गई।
बहुत महंगा हो गया है, हर चीज में महंगाई हो रही है। पैदल ही चलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कम पैसे गाड़ी में कम से कम यूज कर रहे हैं।
महंगाई की मार है, महंगाई की मार चल रही है। कमा कर रहे हैं सब, पेट्रोल में डाल रहे हैं सब, कमा कर रहे हैं।
तो अभी लॉकडाउन से ही 70 रुपए के करीब चल रहा था, 6 महीने में 110 पहुंचा दिया इन्होंने। पिछले लॉकडाउन पिछले 6-8 महीने में 70 रुपए से 110 रुपए पहुंचा दिया इन्होंने। आप पेट्रोल को कह रहे हो, आप ऊपर से लेके सारी इंडस्ट्रियल आइटम तक देख लो ना, सारी चीजें बढ़ा दी।
अलबत्ता इन्हीं परेशान लोगों के बीच कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि महंगाई की बात होगी तो इसका मतलब होगा कि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। चाहे कितना ही पेट्रोल महंगा हो जाए, डीजल की कीमत बढ़ जाए, वो भरवाने के लिए तैयार हैं।
अगर एक चीज पेट्रोल बढ़ गई है तो बाकी सर देख रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है।
आप मुझे ये बता दीजिए
सर, आप सर क्यों नहीं बढ़ गई सर? आपको हाईवे नहीं मिल गए हैं, आपको चीजें नहीं मिल गई है, हाईवे नहीं मिल गए हैं सर,
उसकी कॉस्ट अलग से नहीं ले रहे
सर। तो उसमें हम इंडिया में रहते हैं सर, क्या दिक्कत है?
मेरी बात सुन जा रहे
हैं सर, बात राजनीति की नहीं है सर।
हर एक चीज की तो कॉस्ट अलग ले,
नहीं
आप आप हर एक चीज की कॉस्ट अलग ले रहे हो, एक ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे रेट बढ़े
हैं।
मगर इस तरह के लोगों को भारत में कुछ लोग मोदी भक्त कहते हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी अनाप शनाप बयान आए। कुछ ने तो यहां तक कहा कि पेट्रोल के और डीजल के दाम अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। कुछ ने आमदनी की बात शुरू की, कुछ ने और बयान दिया।
ऑयल प्राइसेस हाई है इसलिए नहीं कि हमने कोई टैक्स लगाया, हम सिर्फ 32 रुपए लेते हैं एक लीटर का।
कहीं नहीं बढ़ा है, अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है इसे तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है।
बहरहाल पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर धीरे धीरे सरकार पर दबाव बढ़ने लगा तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 और 10 रुपए की कटौती के बाद तेल की कीमतों में कटौती करवाई। केंद्र सरकार का यह फैसला किसानों के लिए राहत वाला माना गया। खुद केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि आने वाले रबी सीजन में किसानों को कम दाम पर डीजल मिल सकेगा, लिहाजा उनको सीधा लाभ होगा। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए से घटकर 103 रुपए हो गई और डीजल की कीमत 98 रुपए से घटकर 86 रुपए हो गई। केंद्र सरकार के फैसले और अनुरोध के बाद कई राज्यों ने अतिरिक्त वैट कटौती की घोषणा की। दीपावली के दिन से ये छूट लागू कर दी गई। पेट्रोल और डीजल के दाम घटे तो जनता के बीच राहत की लहर भी देखी गई। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सरकार ने दाम पहले ही बहुत बढ़ा दिए और कम करने की बारी आई तो बहुत मामूली सी कमी की है।
100 तो पार हो गया, देखो 100 से तो नीचे कभी आएगा नहीं। 5 रुपए होना तो ठीक है, थोड़ा तो बचेगा, मगर फिर भी ये पेट्रोल 100 से नीचे ही रहना चाहिए था।
बहुत अच्छी बात है, बहुत राहत मिलेगी, पर एक थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा तो ये बोनस हो जाएगा दिवाली का।
गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनको पैसे बढ़ा दे, तो उसका मतलब ये नहीं कि घटेगी नहीं। अगर चीज अभी बढ़ रही है तो आगे जाके घटेगी भी। वो
गरीब लोग फिर भी परेशानी है, 110 रुपए लीटर चला गया, 5 रुपए से क्या होगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में अहम कटौती की है। इस कटौती से खपत को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई भी कम होगी, इससे गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए माना था कि दाम काफी बढ़ चुके थे।
काफी दाम बढ़ चुके हैं और 100 के ऊपर चली गई हैं, और ये इस चीज पे हम लोग सरकार में इस पे काफी बातचीत चल रही है और चलती आई है। टैक्स कलेक्शन करना और दूसरी तरफ तेल की महंगाई, इसमें एक ट्रेड ऑफ है, हम समझते हैं और इस पे काफी डिस्कशन चलता रहता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की और कीमतों में कटौती से होने वाले लाभ गिनवाए।
हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, कल केंद्रीय कैबिनेट ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज में भारी कमी की है। इससे सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम पर काफी अंतर आएगा, आम नागरिक को राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम को प्रदेश के अंदर 12 रुपए कम करने का निर्णय लिया है और ये प्रदेश के अंदर लागू हो रहा है। डीजल एक सामान्य उपभोक्ता की आवश्यकता के साथ साथ किसानों की जरूरत भी है, उसका लाभ तो मिलेगा ही। युवाओं के लिए, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए पेट्रोल का महत्व होता है अपनी बाइक के लिए और अपने साधन के लिए, तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश को इसका लाभ प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लाभान्वित होगा। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं।
विपक्षी पार्टियों के नेता इसे राजनीतिक निर्णय मानते हुए और अधिक कटौती की मांग कर रहे हैं। राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये कटौती 50 रुपए की होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इनकी कीमतें यूपी चुनाव के बाद फिर बढ़ा देगी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना था कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगातार टैक्स बढ़ाया और अब थोड़ी सी कटौती की है। उनका कहना था कि सरकार अभी और दाम कम करे।
देखिए, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए। मैं ये देख रहा था कि पिछले कुछ साल में, 2-3 साल में 4 साल में सारी दुनिया में पेट्रोल के रेट कम हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल के रेट देश में कम नहीं होने दिए। जितने जितने रेट कम होते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर देखें तो 15 रुपए से, जब से पेट्रोल के दाम कम होने शुरू हुए, उस वक्त एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 15 रुपए थी 1 लीटर पे, उसको बढ़ा बढ़ा के जैसे जैसे पेट्रोल के दाम घटते गए सारी दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम ना कम हो इसलिए अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए और उन्होंने 15 रुपए से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ा के 34 रुपए कर ली पिछले कुछ सालों में। अब वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं राज्य सरकारें कम कर दें।
कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि उत्पाद शुल्क लगभग 35 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कम करने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने ट्वीट किया कि त्योहारों और उपचुनावों के नतीजे देखकर ही सरकार को तेल की कीमतों को कम करना पड़ा, फिर भी पेट्रोल 17 अक्टूबर 2021 और डीजल 25 सितंबर 2021 के स्तर पर ही हैं। अगर जनता को सौगात देना है तो उत्पाद शुल्क को 2014 के स्तर पर लाकर पेट्रोल में 24 रुपए और डीजल में 28 रुपए की कटौती की जाए। वैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $80 प्रति बैरल से ऊपर ही चल रही हैं। पिछले 3 महीने के दौरान इसमें करीब $15 प्रति बैरल की वृद्धि हुई है। हाल ही तक केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का ही हवाला दिया जाता रहा है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने का फैसला लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद लिया गया। नतीजों की समीक्षा में कहा जाने लगा है कि लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से नाराज थे। ऐसे में कयास लगने लगे कि कहीं इन नतीजों की वजह से तो ये फैसला नहीं किया गया, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिसके लिए गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। टीकाकार विजय विद्रोही इस बात का जायजा लेते हैं कि केंद्र सरकार ने क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए। उनका कहना है कि आम जनता की तकलीफ की परवाह सरकारों को नहीं होती, परवाह तब होती है जब सरकार को अपनी गद्दी खतरे में नजर आने लगती है।
लेकिन ये दिवाली का गिफ्ट है या मजबूरी है, इसका श्रेय क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को दें, जयराम ठाकुर को, जिन्होंने कहा कि हार की वजह महंगाई भी है? राजस्थान की जनता को धरियावद और वल्लभ नगर की जनता को श्रेय दे, जिन्होंने बीजेपी को एक जगह तीसरे एक जगह चौथे स्थान पर धकेल दिया, मध्य प्रदेश में एक जगह जहां बीजेपी हारी और कुल मिलाकर जो परसेंटेज वाइज जो हारी, जो परसेप्शन की जो बात हो गई कि जनता के दुख दर्द क्या है, महंगाई उनको लगता है कि 1998 में प्याज के दाम को लेकर सुषमा स्वराज की दिल्ली में, भैरव सिंह जी की राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सरकार चली गई थी, वो एक अपवाद हो गया। कोई परवाह नहीं करता, कोई चिंता नहीं करता, जब तक कि वो चीज वोट में ना ट्रांसलेट होना लग जाए। और पहली बार ऐसा लगा मोदी सरकार को कि जो हिमाचल प्रदेश का नतीजा आया उसमें वोट में चीजें ट्रांसलेट हो रही थी। जयराम ठाकुर ने यूं ही नहीं कह दिया, जयराम ठाकुर समझदार राजनीतिज्ञ हैं, उनको भी मालूम है कि अगर ये वो स्टेटमेंट देंगे तो उनकी गद्दी जा सकती है। वैसे भी लोग कह रहे हैं कि स्टेटमेंट देने से पहले भी गद्दी जाना तय था और स्टेटमेंट देने के बाद गद्दी जाना और ज्यादा तय हो गया। नीतीश कुमार से पूछा गया महंगाई को लेकर सवाल, जब 2 सीटें जीती उन्होंने उपचुनाव में, तो एक जिस पत्रकार ने सवाल पूछा तो उनसे कहा कि आप ये सवाल महंगाई वाला मुझसे क्या पूछते हो, केंद्र सरकार के खाते में चीजें आती, केंद्र सरकार से पूछे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि सरकार को एक वो देना चाहिए, दिवाली गिफ्ट होना देना चाहिए। अब सरकार ने तो दिवाली गिफ्ट दे दिया, अब गहलोत सरकार दिवाली गिफ्ट देगी या कांग्रेस शासित राज्य या कांग्रेस की जो यूपीए की सरकारें हैं वो दिवाली गिफ्ट देंगी, वो अलग बात है, उसका इंतजार सब कर रहे हैं। और ये कितनी बड़ी राहत है, तात्कालिक राहत है, आगे भी ये सिलसिला बने रहने वाला है, या हमें भारत की जनता को श्रेय देना चाहिए उपचुनाव का और भारत की जनता को श्रेय देना चाहिए अगले 2-3 महीने में होने वाले 5 राज्यों में चुनाव का, विधानसभा के फुल फ्लेश चुनाव का, जिनकी वजह से केंद्र सरकार मजबूर हुई कि पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 10 रुपए घटा दिए।
अगले साल चुनाव में सबसे अहम बताए जा रहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक नेता सुनील भराला ने कुछ दिनों पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। बहरहाल वजह जो भी रही हो, लेकिन आम जनता के लिए ये अच्छी खबर है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई है। अब देखना यह है कि सरकार आज के कठिन आर्थिक हालात में महंगाई को काबू में करने और काबू में रखने की चुनौती से कैसे निपटती है। और दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अनकड़ी लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं रविश जैदी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ने वाली ईरानी महिलाओं से आपका परिचय कराते हैं। आज भी हम ईरान की सबसे तेज धावक की चर्चा करेंगे।
रहस्यमय कोरोना वायरस ने इन दिनों दुनिया भर के कई देशों को अपने जाल में जकड़ कर रखा है और विभिन्न देश इसके प्रसार को रोकने के लिए अपनी शक्ति और क्षमता लगाए हुए हैं। इस वायरस ने ईरान को भी काफी हद तक प्रभावित किया है और इसने कई लोगों की जान लेने के अलावा अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद रोगियों की देखभाल और उपचार के लिए कई अस्पतालों में वार्डों को इससे विशेष किया गया, जहां डॉक्टर और नर्सें पूरी निष्ठा के साथ 24 घंटे कोरोना वायरस के संक्रमितों के उपचार में लगे हुए हैं, जिससे प्रभावित होकर साइबर स्पेस कई हैशटैग ट्रेड कर चुके हैं और लोगों ने उनकी प्रशंसा की है।
निसंदेह हर समाज में मानवता और नैतिकता स्वीकृत सिद्धांत हैं। हर इंसान सहयोग और दोस्ती को पसंद करता है, लेकिन जब इन सिद्धांतों को इस्लामी रीति रिवाजों और नैतिकता के साथ जोड़ा जाता है तो इंसान की संतुष्टि के अलावा ईश्वर की संतुष्टि भी हासिल होती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ईश्वर की प्रसन्नता का इस प्रकार वर्णन करते हैं, कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है, लेकिन ये कि ईश्वर उसे संबोधित करते हुए कहता है, तेरा इनाम मुझ पर है और इस इनाम के रूप में मुझे स्वर्ग से कम कुछ पसंद नहीं है।
इस बीच ईरान ने डॉक्टरों और नर्सों के बलिदान और सहयोग को देखते हुए प्रशंसा और सराहना की लहर चल पड़ी है। नर्सिंग इंसानों की सेवा का नाम है, लेकिन इस बीमारी से मुकाबला करने और बीमारों को इससे बचाने के लिए उनका बलिदान पवित्र प्रतिरक्षा के दौर की याद दिलाता है। उस वक्त युवा जोश और पूरे जज्बे से लड़ाई के मोर्चे पर जाते थे और महिलाएं मजबूत स्तंभ की तरह मोर्चे के पीछे रहकर सेवाएं करती थीं।
दोस्तों, आज भी इन संकटमयी परिस्थितियों में ईरानी महिला डॉक्टर और नर्सें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर डटे हुए हैं और एक अदृश्य दुश्मन से बिना किसी डर और खौफ के लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि संभवतः मानवता की सेवा में
उनकी जान चली जाए, लेकिन वे अपने देश और राष्ट्र की सेवा में डटे हुए हैं। उन्हें पता है कि इंसानों से प्यार और दोस्ती का मूल्य अपनी जान के मूल्य के बराबर है। आज पूरा ईरान अपने इन जियालों के सम्मान में सिर झुकाए हुए है, अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपने इन प्रतिबद्ध और बहादुर बच्चों पर गर्व करता है और उन्हें स्वास्थ्य मोर्चे के अग्रिम मोर्चे के सेनानियों के रूप में याद करता है।
मसीह अस्पताल की हेड नर्स की मार्च 2019 में शादी होने वाली थी, लेकिन उन्हीं दिनों ईरान में कोरोना महामारी की लहर उठी। बीमारों और अपने देशवासियों के उपचार और सेवा के महत्व के मद्देनजर उन्होंने अपनी शादी टाल दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मीडिया सलाहकार ने अस्पताल की नर्स के इस कदम की सराहना की और ट्वीट किया, हमें अपने नायकों को पहचानना चाहिए। इस तरह से उन्होंने इस बलिदानी नर्स की सराहना की।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने भी इस युवा नर्स की सराहना की। हालांकि आंसू भरी आंखों से नर्स का कहना था, मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है कि वे मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता के संदेश से मुझे और मेरे साथियों को साहस प्राप्त हुआ है। मैं उनका सम्मान करती हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करती हूं।
दोस्तों, इस हेड नर्स का नाम आमना एंथोतन है और वो मसीह अस्पताल के कोरोना वार्ड की हेड नर्स हैं। 18 साल से वो ये सेवा अंजाम दे रही हैं और इस पेशे से अपने प्यार को इस तरह से जताती है, बचपन से ही मुझे दूसरों की सेवा करना पसंद था, इसी वजह से मैंने नर्सिंग का सब्जेक्ट चुना। मेरा मानना है कि हेड नर्स एक माँ की तरह एक वार्ड में देखभाल की अपनी जिम्मेदारी अदा करती है। मैंने छुट्टी ले रखी थी, लेकिन अपने स्टाफ में मैंने चिंता देखी। मैं जानती थी कि वार्ड में मेरा होना ज़रूरी भी है और इससे स्टाफ को भी साहस प्राप्त होगा। हमें सभी को मिलकर समस्याओं से पार पाना होगा और समाज में बलिदान और कुर्बानी का जज्बा जगाना होगा।
तेहरान के बच्चों के स्पेशल अस्पताल में एक असल नाम की बच्ची को भर्ती किया गया, जिसके इलाज के लिए उसका ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन वो अकेली ऑपरेशन थिएटर में जाती है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले असल अपनी माँ को एक संदेश भेजती है, जो एक दूसरे अस्पताल में कोरोना के मरीजों का उपचार करने में व्यस्त थी। असल एक बहुत ही प्यारा सा जुमला कहती है, माँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करना।
महिलाएं मजबूती और शक्तिकरण का स्तंभ है। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से रचनात्मक और प्रशिक्षक की भूमिका निभाई है। सारे ही समाज उनके साहस और बलिदान के ऋणी हैं। एक दूसरे अस्पताल में सेवा करने वाली एक नर्स मरीज की सेवा और उसे बचाने के अपने एहसास को शब्दों में बयान नहीं कर पाने वाला एहसास बताती हैं, जिसे किसी और चीज से नहीं बदला जा सकता है।
उनका कहना है कि विश्वास करें कि 19 साल की अपनी सेवा में हर दिन पहले से अधिक मुझ में यह एहसास मजबूत होता है। वास्तव में अपने काम से प्यार करती हूँ। नर्सिंग का काम बहुत ही संवेदनशील है और हर कोई इसे अंजाम नहीं दे सकता है। करीब 15 दिन पहले मैंने अपनी बेटी फातिमा और बेटे मोहम्मद पारसा को अपनी माँ के घर पहुँचा दिया था, ताकि जब मैं आराम करने के लिए घर जाऊँ तो वो मेरे नज़दीक नहीं आए और वायरस से संक्रमित होने की आशंका से बचे रहें, क्योंकि बच्चे संवेदनशाली होते हैं।
वो कहती हैं, कभी उनसे वीडियो चैट करती हूँ और कभी खिड़की के पीछे से उन्हें देखती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने पिता के घर में खिड़की के पीछे से उन्हें देखा। जैसे ही बेटे ने मुझे देखा तो रोना शुरू कर दिया और कहा, मामा मैं आपके पास आपकी गोद में आना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल मानो मेरे बेटे के लिए सीने से निकल कर धड़कने लगा। मैं भी अपनी बाहों में उसे लेना चाहती थी, लेकिन ये उचित वक्त नहीं था।
मेरी माँ कहती है कि बच्चा है, उसे अपने माँ बाप की याद सताती है। वे उन दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि सब लोग मिलकर ईद की खरीदारी किया करते थे और हम बहुत व्यस्त रहते थे। जब मैं उनकी ये बातें सुनती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब अपने बच्चों से बात करूँ तो उन्हें साहस दूँ ताकि वे मजबूत बने रहें। मुझे उम्मीद है कि ये दिन जल्दी बीत जाएंगे। जब बच्चों से बात करती हूँ तो उन्हें समझाती हूँ कि हमें उन बच्चों की मदद करनी चाहिए जिनके माता पिता अस्पताल में भर्ती हैं और वे उनके इंतजार में हैं। वे जल्दी ठीक हो जाएं और जाकर अपने बच्चों से मिलें।
ये नर्स कहती है, हकीकत यह है कि एक माँ के लिए बच्चों से दूर रहना बहुत सख्त है। आजकल मेरा दिल अपने बेटे की शैतानियों और सरगोशियों के लिए बहुत परेशान है। घर बेटे और बेटी के बिना सुना सुना सा लगता है। कल रात मैं सुबह तक सोचती रही और चिंतित थी, लेकिन मेरी चिंता बच्चों के लिए नहीं थी क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी आती है। चिंता इस बात की है कि कुछ लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और चेतावनी को अनदेखा कर रहे हैं। बात जिंदगी और मौत की है। इस दौर की चैंपियन कायम अस्पताल की नर्सिंग की एक्सपर्ट जहरा नजफी हैं। आजकल वो भी दूसरे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की तरह कोरोना से मुकाबले में अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की जान बचा रही हैं। लोग उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव की भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। ईरानी कमांडर ने इसराइल के धमकियों का जवाब दे दिया, जंग हम ही खत्म करेंगे। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बाबरी मस्जिद की शहादत को शर्मनाक घटना करार दे दिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि कश्मीरी इस समय सबसे ज्यादा नफरत नई दिल्ली सरकार से करते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा यह प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। तो हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज़।